वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्तिषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। अभी प्रह्लाद महाराज जी की कथा हुई। यदि भक्ति करना हो तो प्रह्लाद जैसा सहिष्णु बनो। पिताजी ने उन तो कितने अत्याचार किए, किंतु भगवान का स्मरण करते हुए सब कुछ सहा। उसके पिताजी ने उसको मारने के लिए विष दिया, सरकों से कटवाया, पर्वतों से गिराया, समुद्र में फेंक दिया, अपनी बहन होलिका के साथ अग्नि में प्रवेश कराया, किंतु जो भगवान को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर चुका है, भगवान का जो हो गया है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी उनको नहीं मार सका। और अंत में भगवान के वर देने पर भी कोई वर नहीं मंगा, जे मैं बनिया थोड़े हूं जो आपसे कोई चीज मांगने के लिए मैं भक्ति करता हूं। ऐसे हम लोगों को भी होने चाहिए, कोई भी कुछ गोवर्धन की कामना मत करो, गोवर्धन से परिक्रमा करते समय भी, भजन करते समय कोई कामना मत करो। कामना करो हे कृष्ण आपके चरणों में भक्ति हो, आपकी प्रिया जी के चरणों की दासी हम हों, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगो। और सबसे संचारित संसारिक चीजें हैं नष्ट हो जाए। और याद रखना, भजन करना हो तो प्रह्लाद महाराज जी ने बच्चों को, असुर बालकों को जो शिक्षा दी थी, बचपन से ही हरि भजन करो। आयु थोड़ी है, 100 आयु में से 50 सोने में निकल जाता है, अंतिम 20 वर्ष बूढ़े हो जाने में कुछ नहीं कर सकते, और पहली बाल्यावस्था के 25 वर्ष वृथा चले जाते हैं, रही 10 वर्ष उसमें शादी विवाह बच्चे और उनका पालन पोषण, भजन कब होगा, इसलिए बचपन से ही करो। मृत्यु अमन संभावी है, उसके लिए प्रह्लाद में महाराज जी ने बताया, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करो, बिना गुरु को, गुरु को लांग करके कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। वो भी करो गुरु छान कर, देख सुन करके करो, जो योग्य गुरु हो, जो हमको भवसागर से तरने में, कृष्ण भक्ति लाभ करने में सहायता दे सके, उनको गुरु करो। संसार से विरक्त हो, सारे शास्त्रों का तात्पर्य समझने वाले हों और भगवान की अनुभूति हो। इस तरह से जो कुछ लाभ हो सबको गुरु के चरणों में समर्पण कर दो। इस तरह से उन्होंने बतलाया, हम लोगों को इसको पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने 108 बार इसका पाठ किया था, 108 बार, और कहा था जो भक्ति चाहना चाहता है वो प्रह्लाद महाराज जी का अनुसरण करे, तभी उसको भक्ति। इतना पिताजी ने कष्ट दिया, क्रोध कहीं किया नहीं किया, पिताजी से अपशब्द कहा नहीं कहा। इसके बाद में आप लोगों को मोहिनी रूप सुनाया, भगवान ने देवताओं की वंचना करने के लिए, देवताओं को अमर बनाने के लिए मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाए। शंकर जी ने कहा जी प्रभु आपका यह रूप मोहिनी रूप मैं देखना चाहता हूँ। कहा जी मत चाहो, अनर्थ होगा, उन्होंने नहीं कहा जे प्रभु आप दर्शन दिए, जरूर दिखलाइए मोहिनी रूप। उसी समय में भगवान सुंदर अद्भुत वही मोहिनी का रूप दिखलाया जो देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों की वंचना की। इतना सुंदर रूप अर्धनग्न अवस्था में और गुलाब का फूल या किस चीज का फूल, कमल का फूल इस हाथ में लेकर के खेल रही थी। देख करके शंकर जी उनकी तरफ में दौड़े कामांध हो करके। पार्वती जी रोकने लगी, ये क्या कर रहे, मृगशाला उतर गया, नंगे हो गए, त्रिशूल डमरू कहीं गिर पड़ा, और बदहवास होकर के पागल की तरफ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंत में भगवान ने मुस्कुरा करके और अपना असल रूप धारण किया। हरी अद्भुत आपका रूप। तो ये भगवान की माया ऐसी ही है, उसको देख करके सभी मुग्ध हो जाते हैं, अमृत का प्यास भी बुझ जाता है इन कामिनियों के रूप पर। इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। तत्पश्चात गज और ग्रह की कथा है। भगवान की आराधना के लिए कोई गए थे इंद्रद्युम्न महाराज, अगस्त ऋषि आए तो उठ करके प्रणाम नहीं किया, बैठे रहे अपने आसन पर ध्यानस्थ होकर। अगस्त ने तुम हाथी हो जाओ, बुद्धि शुद्धि रही, तो वही हाथी होकर के आए। और एक दूसरा राजा अपने रूप में गर्वित था तो उसको ग्रह बनने के लिए अभिशाप हुआ। एक दिन हथिनियों के समूह के साथ में गजराज किसी नदी में या सरोवर में स्नान करने के लिए गया और क्रीड़ा कर रहा था। इतने में एक ग्राह ने, मगर ने उनको पकड़, उसका चरण पकड़ लिया। अब दोनों में खींचातानी होने लगी, हजारों वर्ष तक खींचातानी हुई। उनकी पत्नियों ने, हाथनियों ने छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वो अगाध पानी में ले जाने लगा। अंत में पत्नी और सब लोग उसे छोड़ करके चले गए, अकेले रह गया। जबकि कान और नाक डूबने लगा तो उसने देखा अब तो मेरी मृत्यु अनिवार्य है। हाथ में अपने सूंड में एक कमल का फूल लिया और भगवान को अर्पण किया। अब तो आपके सिवा हमारी कोई गति नहीं है, मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को समर्पण कर रहा हूँ, आप रक्षा करें या न रक्षा करें। साथ ही साथ भगवान आए और गज ग्रह दोनों को पकड़ करके जमीन पर लाए और ग्रह का मुख चीर कर और उसके पैर को निकाला। और इतने में वो सुंदर दिव्य रूपधारी दोनों हो गए भगवान के स्पर्श मात्र से और भगवान की स्तुति करके चले। इस प्रकार की भगवान की करुणा, भक्तों पर करुणा है। यदि किसी पर कोई कष्ट आ पड़े तो इसी तरह से आत्मसमर्पण करके उनको पुकारना चाहिए। यदि कोई भगवान को आत्मसमर्पण करके बिलबिला करके अपने बंधु बांधुओं को बुलाता है, किसी दूसरे से बुलाता है, तो उसका आत्मसमर्पण है कहाँ? समझो इस बात को, जिसने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है उनको किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। किंतु यदि कोई चोर घर में आए और तलवार लेकर के हत्या करने बैठे, अरे दौड़ो बचाओ, तो आत्मसमर्पण कहाँ हुआ, भगवान में विश्वास कहाँ हुआ? प्रहलाद के लिए तो उसी समय आ गए। इसी प्रकार से भक्तों की रक्षा, आत्मसमर्पण करो, ये भक्ति का द्वार है। इस प्रकार से गजग्रह का उद्धार किया। इसके बाद में आप लोगों ने बलि महाराज की बातें सुनी। बलि महाराज ने स्वर्ग छीन लिया देवताओं से और इंद्र भाग गए और इधर उधर घूमने लगे। फिर दिति और कश्यप ने अपने पुत्रों की यह दशा देख करके तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। ननका जी हमारे पुत्रों की रक्षा कीजिए और उनको स्वर्ग इत्यादि का राज्य मिल जाए, अच्छी बात है। फिर उन्हीं के गर्भ से ये बामन के रूप में, बामन माने बामन अंगल, जैसे बामन होते हैं इतना सुंदर रूप, अद्भुत रूप, हाथों में नारियल के पत्तों का छाता और पैर में खड़ा हूं और बगल में वेदों को धारण करके बलि महाराज की सभा में गए और बलि महाराज उनके तेज को देख करके बड़े स्तंभित हो गए। क्या आपको चाहिए, आप क्या मांगने के लिए मेरे यहां आए? मैं ब्राह्मण बालक हूं, मुझे तपस्या करने के लिए स्थान चाहिए, मुझे 3 कदम भूमि की जरूरत है, आप यही दीजिए। अरे क्या मांगता है, बामन बुद्धि भी है, बामन भी है, तुम ऐसी चीज मांग रहे हो? बैठिए बामन देव जी, आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा जब मैं ब्राह्मण भिक्षुक हूं, हमको 3 पैर की भूमि दे दीजिए। तो उन्होंने कहा जब तुम स्त्री मांगो सुंदरी, राज्य मांगो और कोई द्रव्य मांगो, ये क्या 3 भूमि, कोई राज्य ही मांग लो। नहीं नहीं, मैं मुझको उसी में संतोष है और कुछ नहीं चाहता। उस समय में क्या हुआ, आप तीर्थ महाराज से सुनिए, बोल दो।
अभी अभी श्री गुरु जी ने वामदेव जी के आविर्भाव के विषय में वर्णन किया तथा श्री वामदेव बलि महाराज जी के यज्ञ सभा में जब पहुंचे, उस समय बलि महाराज जी ने देखा अद्भुत ब्राह्मण बालक, जीवन में पहली बार हजारों लाखों ब्राह्मण आए, पर ऐसा तेजस्वी तो कभी नहीं देखा। देख करके बलि महाराज जी ने उस समय उनकी पूजा अर्चना की, सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन करके चरण वेद को पान किया, फिर आरती उतारे, माला पहनाए, इस प्रकार पूजा अर्चना की। उस समय रत्नमाला जो बलि महाराज जी की कन्या है देख करके मुग्ध सी हो गई, इतना सुंदर बालक इसको गोदी में लेकर के दूध पिलाऊं, परंतु मौका नहीं मिल रहा था। जबकि बलि महाराज जी उनसे बात करने लगे कि हे ब्राह्मण दाया, हे ब्राह्मण बालक, आपके इस प्रकार दिव्य तेज को स्वरूप देख करके मैं मुग्ध हो गया, आज आप मुझसे कुछ भी दान मांगे, क्या चाहते हैं, जो कुछ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मेरे प्राणों के भी चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ, राज्य, हाथी, घोड़े, धन संपदा, सुंदरी कन्या, कुछ भी आप मांगे। उस समय जबकि वामदेव जी बलि महाराज जी से कहने लगे, हे बलि महाराज, आप तो समस्त गुणों के द्वारा विभूषित थे, पितृ पितामह के गुणों को आपने प्राप्त किया है, और यह क्यों नहीं होता, आपके वंश में महान महान विभूतियां हुई हैं, धर्म भी, सुर भी, और कर्म भी, दान भी, बड़े बड़े वीर पुरुषों का जन्म हुआ है, आपके वंश में प्रहलाद महाराज आपके पितामह, इतने बड़े धार्मिक पुरुष जिनकी महिमा समस्त संसार में गान होता है, सभी लोग कीर्तन करते हैं, यहाँ तक कि देवताओं की सभा में भी प्रहलाद महाराज जी की महिमा का वर्णन होता है, तो ऐसे प्रहलाद महाराज जी के धर्म के, धर्म के धुरंधर के, इसी प्रकार जो कि सुर वीर वीरों में जो महान हिरण्याक्ष जैसे वीर किए, उनके समान प्रतापी वीर कौन हो सकता है, भगवान विष्णु के हाथ से कितने बार गदा धनुष बाण सब फेंकवा दिए, वे जाते तो अन्य युद्ध में विष्णु को भी छक्का छुड़ा देते, पर तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, छल कपट नहीं किया, परंतु विष्णु ने ही छत पकड़ करके उनको मारा, फिर भी मार करके भी जीत तो हिरण्याक्ष हुई है। इस प्रकार पांडव जी बोले कि हे बलि महाराज, आपके पिताजी जैसे महादानी कौन होगा। देवता लोग युद्ध में बार बार हटते चले गए, अंततः हार करके आपके पिताजी के पास ब्राह्मण वेश में आए भीख मांगने के लिए। बोले कि क्या चाहिए बताइए। तब देवताओं ने कहा कि आपका मस्तक हमें दान में चाहिए। मस्तक, क्या बात है, आप कौन है। चलो आप ब्राह्मण वेश में है तो कोई बात नहीं, दान तो दे दूंगा, कोई चिंता नहीं, आप बोल दो आप कौन। तब देवताओं ने परिचय दिया कि हम देवता है, आपके साथ लड़ते लड़ते हम हार चुके हैं, हम हारे चुके हैं, पर आपका मस्तक हम मांगने आए हैं, आप अपना सिर दे। उस समय बोले महाराज जी के पिताजी ने अपना मस्तक दान में दे दिया, अपना गला काट करके दे दिया। तो इस प्रकार दान भी, धर्म भी, धर्म भी और सूर भी बड़े बड़े गिरोह का जन्म, उन सब के गुण आपके अंदर में विराजमान। आप जैसे महान प्रतापी, महान गुणी, महान दाता और कौन हो सकता है। त्रिलोक में आपकी महिमा का विस्तार हो रहा है, आपके जस की ख्याति है। इसलिए मैं तो ब्राह्मण बालक हूं, ब्राह्मणों को मारना या अधिक लोग लालच में जाना यह भी अच्छा नहीं लगता है, कि धर्म का विरुद्ध है। फिर भी जब आपने दान मांगने को कहा, हम तो कुछ मांगेंगे ही, हम आपसे यही दान मांगना चाहते हैं कि आपके राज्य में हम तपस्या में बैठ सके, हमारे लिए भी थोड़ा सा अधिकार मिल जाए। तो हमें तीन बात पूरी चाहिए, हमें अधिक कुछ नहीं, केवल इतना सही। उस समय बलि महाराज जी बोले, ब्राह्मण बालक, बात करते समय तो बड़े गुणों की तरह, बड़े बुद्धिमान की तरह बात की, और मांगते समय छोटा बालक बन गया। अरे और कुछ तो मांगो। बोले नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम इसी से ही संतुष्ट होंगे। इसलिए आप दान संकल्प कर दें और दान दिला दें तो हम खुश हो जाएंगे। तो बोले महाराज जी, बोले अच्छा बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसे ही होगा, चलो हम संकल्प करते। उस समय कमंडल उठा करके संकल्प कहने जा रहे थे, शुक्राचार्य ने गुरु जी से मना के, बोले महाराज जी से मना किया, बोले महाराज सावधान हो जाए, ये ब्राह्मण बालक कोई साधारण नहीं, यही छलिया देश में वहां कपटी सारा सर्वनाश कर देगा, आपका राज्य बांट सब चला जाएगा, आप उसके छल कपट में मत जाइए। पर कहा मानता, फिर भी शुक्राचार्य कमंडलू के नाल में घुस गए वज्र की कीड़े बनकर, और नाले को बंद कर दे जिससे कि पानी नहीं गिरे। तो कमंडलू बोलते हैं कि पानी गिरे तो नाल में से पानी नहीं गिर रहा, क्या बात है, पानी कैसे नहीं गिर रहा। तो बामन ने बोले, लगता है इसमें धूल मिट्टी जम गया है, कोई कूड़ा करकट जम गया है, एक कूड़ से लगा देंगे छेद हो जाएगा, निकल जाएगा सारा। तो उन्होंने सोचा बात तो सही है, तो कूड़ लगा दी। जैसे ही कुश लगाया तो शुक्राचार्य की एक कान फूट गई, खड़ा हो गया खून की धार में, अरे खून की धार, ये क्या बात है। इतने में शुक्राचार्य खड़ा हो करके भाग निकला। योगी कहते हैं, ब्राह्मणों के दो नेत्र हैं, श्रुति और स्मृति, एक विकल कारण अंध परिकीर्तित। श्रुति स्मृति को मानता है, कर्मकांड को मानता है, और शुक्राचार्य शुक्र नीति को मानता है। धातु रक्त हड्डी ये सब के टुकड़ा भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, या तो राख भस्म भी मिल जाए, उससे आत्मा को जिला देता है, इतनी शक्ति इतनी ताकत है। परंतु वेद को श्रुति को नहीं मानता, इसलिए वो खड़ा हो गया। क्यों भगवान को मानता नहीं, ऐसी नास्तिकता नहीं। इसलिए शुक्राचार्य कहा शुक्र कहा ही बन करके रहा, वहां से भाग करके चल। इधर बोले महाराज ने उस कमंडलू को माजा, सफाई किया, माज मज करके साफ सुथरा करके फिर पानी भर करके लाए, अब संकल्प पाठ किया, संकल्प पाठ करते हुए पानी छोड़ दी, बोले हमने तीन बार बूंदी दे दी, अब अपने पैर से नाप ले। तब बावन देव अब बैठे हुए थे, बोले कि ठीक है अब अपने पैर से नापता हूँ। अब वे खड़े हो गए, खड़े हो करके अब उनका पैर तो दो ही है, पर कहीं से और एक पैर भी निकल करके आ गया, जो कि एक पैर से तुम ऊपर को बढ़ा दिया, सारे ब्रह्मांड को नापने ऊपर के लोग, जिनकी औंठा ब्रह्मांड कटाव को फोड़ करके बाहर निकल गया। तो ब्रजा नदी के जल उनके चरण को धोते हुए नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा जी ने उस समय देखा कि अरे भगवान का चरण धो चरणाम में, उस समय कमंडलों में धर के रख दिया। वही पीछे से जा कर गए, ब्रह्मा जी ने भगीरथ जी को दान किया, गंगा जी होकर के प्रकट हुई। अब इधर में क्या होता है, भगवान वामन देव ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, दूसरे पैर को पाताल की तरफ पहुंचा दी, संपूर्ण ब्रह्मांड ही नापना हो गया। अब वामन देव बोले कि बोली महाराज तुमने प्रतिज्ञा की है दान देने के लिए, अब सारा ब्रह्मांड नापना हो गया, अब क्या नापू, अब वचन दे करके तुम वचन पूरा नहीं कर सका, जाओ अब तुम नरक में जाओ। ऐसे ही डांट टपट लगाने लगे। पर तो बोली महाराज जी ने पहले से ही तो चरणा में पान कर लिया था, इसलिए उनका डर भय समाप्त तो हो गया था। बोले कि प्रभु आपको हमने वचन दिया, बात सत्य है, और आपने दो पैर से आपने सारे ब्रह्मांड को नापा, परंतु अभी हमारे मस्तक को तो नापा नहीं, आप अपने चरण कमल को हमारे सिर पर धर दें। उस समय भगवान विष्णु ने अपना चरण उठाया, उनके सिर पर धर दी, धर करके देवताओं को इशारा किया, जाओ स्वर्गराज्य छीनो। अब देवता लोग तो दौड़ गए, स्वर्गराज्य छीन सब जम करके बैठ गए। फिर में भगवान ने क्या किया, बोले महाराज जी को नागपाश में बांध दी, जेल में नागपाश में बांध दिया। इतने में उनकी पत्नी वृंदावली आई, बेचारी रोने लग गई, हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना की भगवान की। और उधर से प्रहलाद महाराज जी भी आए, वे आकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उस समय भगवान प्रसन्न हो करके उनके नागपाश को खोल दिया। खोलने के साथ साथ बोले कि बोले महाराज मैं तुम्हारी भक्ति से मैं अतीब प्रसन्न हूं, देखो मैं ये चाहता हूं कि देवता और दानव दोनों ही भाई भाई हैं, इन भाई भाइयों में आपस में लड़ना भिड़ना, इसके द्वारा नर संहार प्राणियों का संहार हमेशा चलता आ रहा है, इस विवाद को मिटाने के लिए मेरा अवतार हुआ है, मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता फिर से ऐसे ही विवाद बना रहे। देवताओं को स्वर्ग राज्य दे दिया, परंतु तुम्हारे लिए मैंने सुदम का राज्य प्रस्तुत किया, स्वर्ग राज्य से भी अधिक सुखदायी अधिक आरामदायी सुतल लोक में तुम दानवों के साथ में सपरिवार वहां पर निवास करो, और अगले कल्प में तुम देवराज इंद्र के पद पर अधिष्ठित हो। इस प्रकार भगवान ने उनको कहा, यह कहते हुए बोले कि हे बोले महाराज मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूं, मुझसे तुम वर मांगो, क्या चाहते हो बोलो, जो कुछ मांगोगे मैं वही दूंगा। उस समय बोले महाराज जी ने उनकी हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु आप जहाँ भेज रहे हैं आपका जो नियम जो विधान वही हमें पालन करना है, आपके चरणों में हमारी सदैव भक्ति बनी रहे, मैं आपसे यही पर मांगता हूँ, जैसे आप हमें भेज रहे हैं सुतल लोक को, आप हमारे साथ में चले, वहीं आप हमारे दरबार में सदैव रहे, आपकी चरण कमल की हम सेवा कर सके। उस समय बलि महाराज ने भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा बांध लिया, इसलिए मंत्र कहा जाता है, ये वत्त बलि राजा दानवेंद्र महाबल, महाबलि दानवेंद्र बलिराज भक्ति के द्वारा भगवान को बांध लिया। इस प्रकार भगवान बलि महाराज के भक्ति में विवश हो गए, बंद करके उस भक्ति में अधिक बनकर जो कि बलि महाराज के साथ में चले, इस प्रकार बलि महाराज की इस प्रकार निष्काम भक्ति, जिस भक्ति के द्वारा उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया। तो भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान भक्त वत्सल है, बिन असुर दैत्य दानव राक्षस देवता गंधर्व सिद्ध चारण कोई विचार नहीं करते, ना कोई देते, वे दोनों सदैव भक्तों के वशीभूत हैं। इस प्रकार भगवान बलि महाराज जी के भक्ति में वशीभूत हो गए, उनके अधिक बनकर उनके दरबार में सदैव रहे, जबकि बलि महाराज जी उनकी सेवा करते रहे। इस प्रकार बोलो बलि महाराज की, बोलो बावन देव भगवान की, बोलो त्रिविक्रम स्वरूप की, बोलो भगवान बावन देव की। इस प्रकार के सभी कथाएं हम लोग गुरु जी के मुखारविंद से इस प्रसंग में बलि महाराज जी के दरबार में लक्ष्मी जी कैसे जाती है वो प्रसंग है। अब आशा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि छोटे से शब्दों में उस प्रसंग को गुरु जी कहे।
कीर्तन करे दो,
यही पर विराम दिया जाता है। कल से ठीक नवम स्कंद की कथा है तथा कृष्ण जन्म का प्रसंग है, जो कि कृष्ण जन्म प्रसंग में आप सभी बधाए गए हैं और कृष्ण जन्मोत्सव को मनाएंगे। इस प्रकार यह कथा प्रसंग चलता रहेगा, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला कथाओं में प्रवेश करेंगे।
अच्छा।